समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में स्वागत और अभिनंदन। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या है इसका इतिहास। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार और मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। नमस्कार अनुजा।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फरहत। फरहत, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेफर यू टू यू द लेटेस्ट ट्रेंडिंग सिंस यस्टरडे।
जी,
आई जस्ट लव द फन एंड सिंबॉलिक गिफ्ट टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू रोम, अ पैकेट ऑफ पार्लेज मेलोडी टॉफी। द गिफ्ट वॉज अ प्लेफुल रेफरेंस टू द पॉपुलर मेलोडी इंटरनेट ट्रेंड विच कम्बाइंस द सरनेम्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी and Melanie, of course. And from a viral Colosseum selfie and Rome drive to dinner diplomacy and Melody Toffees, PM Narendra Modi and Italian Prime Minister Giorgia Meloni once again sent the internet into a frenzy during Modi's Italy visit. The hashtag Melody trended globally as the two leaders mixed diplomacy with viral moments while also boosting India-Italy ties in technology, AI, energy and connectivity. The trend exploded globally after Prime Minister Meloni posted a selfie-style video with Modi from COP28, where she smilingly referred to him as the most loved leader. The post sparked a huge meme trend online, especially among users in India and Italy, who enjoyed the friendly chemistry between the two leaders. I'm sure you must not have missed it. You
जी बिल्कुल, कल से बहुत ही ज्यादा हर सोशल मीडिया साइट्स पर ये वायरल हो रही है वीडियो और दोनों देशों की दोस्ती को ये बयां कर रही है।
The visit not only had important diplomatic goals, but India and Italy are expected to increase cooperation in areas such as trade, defense, maritime security, connectivity and strategic sectors. And of course, as you mentioned, Farhat, it's also International Tea Day today. Wishing all our listeners a happy tea time while tuned into today's fresh episode of Parikrama. It's time for our headlines first. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe Economic Corridor for deepening economic relations.
सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बौद्ध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया।
Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries.
पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश।
Chief Minister C. Joseph Vijay led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers.
IPL cricket में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से।
And India Meteorological Department issues red color warning for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And of course, Farhat, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Tea Day. Certainly, there is something comforting about a cup of tea, isn't it, Farhat?
जी बिल्कुल अनुजा।
A cup of tea often feels like a pause that heart needs.
जी, घंटों काम करने के बाद आराम करता हुआ कोई थका हुआ कर्मचारी हो या फिर हमारी दादी जो अपनी सुबह की शुरुआत शांत प्रार्थनाओं से करती हैं।
Or friends sitting together during monsoon rains, talking over cups of chai across the world. टी इज फार मोर देन अ ड्रिंक.
जी बिल्कुल, और ये गर्माहट है, यादें हैं और मेहमान नवाजी हैं. लेकिन सुनने वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हर एक कप की चुस्की हम लेते हैं उसके पीछे कितने हाथ चुपचाप काम करते हैं, और कैसे एक साधारण सी पत्ती ने हजारों सालों से संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं को आकार दिया है.
ऑफ कोर्स इट्स अ पॉज शेयर्ड अक्रॉस कल्चर्स, कन्वर्सेशंस एंड काउंटलेस मोमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. द स्टोरी ऑफ टी बिगैन मोर देन 5000 इयर्स अगो, येट इवन टुडे इट्स इंपॉर्टेंस कंटिन्यूज टू ग्रो. टी इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेजेस इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर.
जी अनुजा, चाहे आप भारत की हलचल भरी चाय की दुकानों की बात करें या जापान की शानदार चाय समारोह की, चाय एक सार्वभौमिक भाषा बोलती है. दिन की शुरुआत करना बिल्कुल संभव है अगर हाथ में एक प्यारी सी प्याली चाय ना दी जाए. सर्दियों में तो ये और भी जरूरी हो जाती है, जब नरम रजाई से निकलने के लिए हम खुद को मना रहे होते हैं और एक गर्म चाय की प्याली से अपने हाथ सेक रहे होते हैं. ये सिर्फ एक कप चाय से कहीं बढ़कर आगे है.
एंड ऑफ कोर्स टी टाइम इज अ ब्यूटीफुल रिचुअल फॉर सोशल बॉन्डिंग, प्रोवाइडिंग द परफेक्ट एक्सक्यूज टू स्टेप अवे फ्रॉम स्क्रीन्स, रिलैक्स एंड शेयर स्टोरीज, वेदर इट्स मॉर्निंग फैमिली चाय, एन आफ्टरनून ऑफिस ब्रेक और अ कोजी वीकेंड गैदरिंग. इट नेचुरली फॉस्टर्स कनेक्शन. एंड इफ वी रिकॉग्नाइज द लॉन्ग हिस्ट्री एंड द कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टी अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज द सिग्निफिकेंट रोल इट प्लेज इन रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग countries, the United Nations General Assembly proclaimed 21st of May as the International Tea Day.
बिल्कुल, यकीनन कभी न कभी हमारे सुनने वालों के मन में भी इस एक कप चाय के पीछे की यात्रा को लेकर जिज्ञासा जरूर जागी होगी. आज हम उसी जिज्ञासा के बारे में बात करेंगे. दुनिया भर में 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए चाय महज एक पेय उद्योग नहीं है, ये उनकी आजीविका है, उनके जीवन का आधार है.
एंड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज टी कल्टिवेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस of families. For countless women especially, the tea sector has opened doors to financial independence and stronger participation in local economies there.
लेकिन चाय केवल बहुत ही खास तरह की जलवायु परिस्थितियों में ही उगती है. बारिश का कोई भरोसा नहीं होता. बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन चाय के बागानों पर असर डाल रहे हैं और कई इलाकों में पैदावार कम कर रहे हैं, और इसीलिए आज चाय को लेकर होने वाली बातचीत अब सिर्फ उसके स्वाद या खुशबू तक ही सीमित नहीं है, ये अब पर्यावरण को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है.
Indeed. How do we ensure that tea production remains fair, transparent and environmentally responsible? That is exactly what International Tea Day seeks to highlight. How to build sustainable value chains from field to cup so that tea continues to benefit people, cultures and the planet for generations to come.
बिल्कुल अनुजो, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाय का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है. अक्सर चाय ही लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया बन जाती है. जब कोई मेहमान घर आता है तो अक्सर पहला सवाल ही होता है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे, और कोई मुश्किल बातचीत भी साथ मिलकर एक कप चाय पीने से आसान हो जाती है.
एंड दैट्स सो ट्रू फरहत.
जी,
बिजनेस मीटिंग्स, ट्रेन जर्नीज, कॉलेज कैंटीन्स, रोड साइड स्टॉल्स, tea quietly accompanies life's moments. Different cultures have shaped tea in beautiful ways. Some prefer strong milk tea with spices, others enjoy delicate green tea or fermented varieties.
Ji, aur chai khud bhi is baat par nirbhar karte hue badal jati hai ki uski pattiyon ko kaise process, oxidize ya ferment kiya gaya hai. Phir bhi in antaron ke bavajood bhavna wahi rehti hai.
Right, so speaking of Assam, the northeastern states share a long historical association with tea. Since at least the 12th century, the Singpho tribe in Assam utilized the leaves of wild growing tea bushes found in the forest for medicinal purposes. It is believed that the Singphos, considered to be among India's first tea drinkers, still process tea using a traditional centuries old method known as dhuangchang.
Ji anuja, Singphos ka manna hai ki pratyek bhojan ke baad paramparik roop se chai sevan karne se pachan mein sahayata milti hai aur samuday ko cancer aur madhumeh se mukt rakhti hai. Assam mein होम राजाओं के शासनकाल के दौरान भी लाल चा, जो कि असम में उगाए जाने वाले विशेष जंगली पत्तियों से बना एक शराब का सेवन है, दोनों शाही और आम लोगों के घरों में एक लोकप्रिय स्वागत पेय है. वो सिंगफोस के अध्यक्ष बिसागाम थे और जिन्होंने 1823 में अंग्रेज रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स को चाय पेश की थी. अंग्रेजों ने पाया कि आसामी चाय की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में करना अनामिका किस्म की चाय की तुलना में ज्यादा आसान था.
and soon they established tea plantations as an alternative to the expensive Chinese teas they were accustomed to drinking. The production of Indian tea witnessed a remarkable increase under British rule, and they paid wages to Indians to work in the tea plantations. And interestingly, tea's cultural importance is so profound that 6 tea cultivation sites have been recognized by Food and Agriculture Organization of United Nations as globally important agricultural heritage systems.
जी अनुजा, और ये केवल कृषि पद्धतियों बल्कि परंपराओं, जैव विविधता और सदियों के मानवीय ज्ञान को भी संरक्षित रखते हैं.
So maybe the next time we take a sip of tea, we'll remember that life's simplest moments can also be the most meaningful. Let's celebrate the comfort, calm and connection that every cup brings. Tea with friends is a therapy in disguise.
जी, और ये जिंदगी की सबसे शक्तिशाली चीजें जरूरी नहीं कि जटिल हों. ईमान कैसरानी भी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं. फिर कहीं बैठकर पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कहीं बैठकर पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कोई शाम का पल साथ गुजारा जाए. तो चाय बेहद जरूरी है. श्रोताओं, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं का. तो अनुजा, सबसे पहले हम कहां जा रहे हैं?
We all take our listeners first to Leh to explore the potential of apiculture as a sustainable livelihood in Ladakh. 2-day seminar is being organized in Leh from yesterday, and it is an effort to introduce apiculture in the cold arid region of Ladakh after a series of successful trials and studies at Krishi Vigyan Kendra in Leh. We have a report on this.
A series of studies on production of honey in the cold arid region of Ladakh has found that apiculture has a promising livelihood option for the farmers of Ladakh. With this result, the first ever seminar is being organized in Leh, Krishi Vigyan Kendra Leh, Head Professor Dr. Ferozdin Sheikh, sharing the successful trial on extraction of honey through buckwheat and alfalfa, said.
पिछले 2-3 सालों से इस पे काम कर रहे, तो अभी लार्ज स्केल में हमें हनी प्रोडक्शन हो रहा है. इसमें हम जो है कॉलोनीज यहाँ पे हमारे स्थापना सेंटर में वहाँ पे रखा है, तो वहाँ से जो है ये कॉलोनीज को वहाँ पे रखने के बाद वो जो बकवीट और जो अल्फा अल्फा है वहाँ के फ्लावर्स में, उसके हिसाब से फिर हमने वहाँ प्रोसेस सेंटर करके हमें यहाँ पे हनी लगाया. और फार्मर्स के लिए बहुत इनकम अच्छा है. बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें हमने जैसे चॉकलेट है, केक्स है, और भी वैल्यू एडिशन के हमने किया. हमने यहाँ के कैंडल्स भी हनी का जो वैक्स है.
This initiative, titled as Honey, Sustaining and Sweetening Future, has brought together renowned scientists, researchers, academicians and entrepreneurs from different parts of the country. It is being organized by University of Ladakh in collaboration with Sheri Kashmir University of Agriculture, Science and Technology, Jammu, with support of several reputed institutions and banks. Yangchen Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
और श्रोताओं, अब चलते हैं भोपाल. देशी बीजों को बचाने की अनोखी मुहिम मध्य प्रदेश से चल रही है. जानते हैं कैसे सुनीता सिहोरे खास बीज बैंक के जरिए किसानों की जिंदगी बदल रही हैं.
मध्य प्रदेश के बालाघाट की सुनीता सिहोरे के घर एक अनोखा खजाना है. इस खजाने में सोना चांदी नहीं, बल्कि 70 तरह के देशी बीज हैं. सुनीता आजीविका मिशन की बीज सखी हैं. वो किसानों को ये बीज मुफ्त देती हैं, बस एक वादे के साथ, फसल होने पर जितना बीज लिया था उसका 2 गुना वापस करना होगा, ताकि अगले किसान तक भी ये अमानत पहुँच सके. ये बीज भी बहुत खास हैं. कम पानी में उगते हैं, कम खाद मांगते हैं और सूखे में भी डटे रहते हैं. रासायनिक खेती की दौड़ में जो बीज पीछे छूट गए थे, सुनीता सिहोरे जैसी महिलाएं उन्हें फिर से जिंदा कर रही हैं. पूरे मध्य प्रदेश में अब 454 बीज सखियां हैं और 29 जिलों में 99 बीज बैंक बनकर तैयार हो चुके हैं. आगामी खरीफ फसल के लिए किसान बीज सखियों से देशी बीज ले सकते हैं. परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल.
And from Leh to Bhopal, and now we take you to Panaji, where MICE Tourism, or MICE Tourism, which stands for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, is emerging as an important part of Goa's tourism sector. The Goa Tourism Department is planning new initiatives to promote the state as a preferred destination for business events and conferences. We have more on this from our correspondent from Goa.
Goa Tourism Department is setting up a single window MICE bureau to promote business tourism in the state. The bureau will function as a nodal agency for meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism in Goa. The decision was discussed during a meeting with tourism stakeholders on the roadmap for the next 6 months. The proposed bureau is expected to help strengthen Goa's position as a preferred MICE destination. Regarding this, Tourism Minister Rohan Khamte said,
"Tour operators, the OTAs, everybody is coming together, including the airport authority, to ensure the monsoon sells well as a package. So, Honorable Prime Minister is ensuring that domestic tourism in India is absolutely witnessing unprecedented growth. And we need to ensure that Goa continues to remain one of the country's most aspirational destinations."
Despite global challenges affecting airline operations, tourist arrivals to Goa continue steadily. It is clear that Goa no longer sees an off-season and remains a preferred destination for visitors, and efforts are also underway to promote monsoon tourism in the state. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
और एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है. हरियाणा सरकार ने प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का विकल्प देने की शुरुआत की है. इसके लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय खोले जा रहे हैं. एक रिपोर्ट.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि फिलहाल वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का शुभारंभ किया गया है. इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे तथा इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. विद्यालयों में आधुनिक संसाधन, बेहतर आधारभूत ढांचा, प्रयोगशालाएं, कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी. शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया है ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके. ये निर्देश भी दिए गए हैं कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे. शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
And a three-day workshop on palm oil development in Northeast region concluded at Pasighat in East Siang district of Arunachal Pradesh. We have a report on this.
A three-day national workshop on strategic solutions for rapid development of oil palm in the Northeast at Pasighat College of Horticulture and Forestry, CHF, in East Siang district of Arunachal Pradesh concluded today. The workshop aimed on strategic approaches for rapid expansion of oil palm cultivation in the Northeastern Hill regions and formulation of a roadmap for achieving self-reliance in vegetable oil production following the central government's Atmanirbhar Bharat mission. On the occasion, representatives of Northeastern states placed reports of oil palm cultivation in their respective states and explained opportunities and challenges in oil palm cultivation and processing. The workshop was jointly organized by the CHF Society for Promotion of Oil Palm Research and Development, ICAR-IIOPR, Central Government's Agriculture and Farmers Welfare Department, and oil palm processing companies. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. आईपीएल क्रिकेट की सबसे पहले बात, आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी.
एंड नाउ कमिंग टू द बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट आफ्टर अ choppy trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. The broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 ended flat with negative bias, while the small-cap 100 rose by 0.6%. For more updates about the market activities, of course, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे।
ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकति ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया।
ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने।
जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया।
1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल।
जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया।
ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर जीबोन और आसोमोत महात्मा का जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।
आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी।
बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के महान सपूत को शत शत नमन।
And we also pay tribute to the man who taught India to hug trees, the Gandhian who was the driving force behind the Chipko movement, who died due to COVID-19 on this date in 2021. Yes, I'm talking about Sundar Lal Bahuguna. It was a non-violent agitation, the Chipko movement, which originated in Uttar Pradesh's Chamoli district in 1973. And the name of the movement Chipko comes from the word embrace, as the villagers hugged the trees and encircled them to prevent being hacked. It is best remembered for the collective mobilization of women for the cause of preserving forests, which also brought about a change in attitude regarding their own status in society. Its biggest victory was making people aware of their rights to forests and how grassroots activism can influence policy making regarding ecology and shared natural resources. It led to a ban on commercial felling of trees above 30 degrees slope and above 1000 mean sea level in 1981. Of course, it was known for coining, the person was known for coining the Chipko slogan, the ecology is permanent economy. After the Chipko movement in the 1970s, he gave the message across the globe that ecology and ecosystem are more important, and he was of the opinion that ecology and economy should always go together.
बिल्कुल अनुजा, और इसके अलावा उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किया और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की. दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा था.
We really need another such man now, Farhad, and he was awarded the Padma Vibhushan in 2009.
जी, और अब आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत को याद करते हैं, गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक रही जानकी देवी बजाज को. उन्होंने एक कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया और एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया.
She was inspired by Mahatma Gandhi and her husband Jamna Lal Bajaj embraced a life of rigorous simplicity and patriotism. Her dedication to nation building continued long after India gained independence in 1947. And today we also pay respectful tribute to former Prime Minister Bharat Ratna Shri Rajiv Gandhi, who served as the Prime Minister of India from 1984 to 1989 for two terms, on his death anniversary today. His life was cut short by an act of terror, and that is why the day is observed as National Anti-Terrorism Day, reaffirming our firm resolve to fight terrorism in all its forms. Terror has no religion, no humanity, and no place in a democratic society. It also reminds us that peace is not merely the absence of violence, but the strength of a nation that refuses to surrender to fear.
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी को. अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा. अपनी पैनी कलम से बड़ी सावगोई के साथ इन्होंने सटीक शब्दों में व्यक्त किया. शरद जोशी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन्न होकर व्यंग्य लिखना शुरू किया.
नोन फॉर हिज रेजर शार्प विट, ही मास्टरफुली ब्लेंडेड टाइमलेस ह्यूमर विद सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री. ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री बाय द Government of India in 1990. Sharad Joshi has written many satirical essays on political, social, cultural, and economic topics. And of course, we have also, he has also given dialogues for many of films. And we have chosen a dialogue from his from a film, Choti Si Baat, for which he had written a dialogue.
मुझे मालूम है आपका नाम प्रभा नारायण है और आप खार में 9th लेन में रहती हैं, शान निवास तीसरा माला.
कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं?
बस मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हूँ, डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स.
चाय पीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी.
पिछले सोमवार को आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और शुक्र को हरी. अक्सर हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं आप. आपका बैग हमेशा सफेद रंग का रहता है ना? बैठते समय आप अपना पैर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून बड़ा है.
And today we also pay tribute to Rai Bahadur Sir Sundarlal, who was a prominent Indian jurist, academic administrator, and the founding vice chancellor of Banaras Hindu University. He is widely remembered for his major contributions to Indian education and the Indian legal system.
और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में अब हम याद कर रहे हैं कुछ ऐसे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जो कम फिल्मों का निर्देशन करते थे, लेकिन जितनी भी फिल्में बनाते थे वो कमाल की होती थी. उन डायरेक्टर्स में से एक यश चोपड़ा थे और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा. और सोशल मीडिया पर भी आदित्य चोपड़ा की बहुत कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका काम बोलता है. 23 साल की उम्र में आदित्य ने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
यस, एंड द फिल्म्स ही हैज प्रोड्यूस्ड मेक हिम द हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर ऑफ ऑल टाइम. एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन वाज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अ जॉनर डिफाइनिंग बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टेड बाय हिम एंड रिलीज्ड इन 1995. द मूवी हैड शाहरुख खान एंड काजोल. ऑफ कोर्स वी रिमेंबर ऑल दैट those things, and the film is regarded as a definitive Bollywood romance and has significantly shaped Indian popular culture and imagination over the years.
I'm sorry, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया.
कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं.
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम.
और इसके बाद आदित्य चोपड़ा ने दूसरी फिल्म मोहब्बतें डायरेक्ट की और ये सुपरहिट रही. अब अलावा आदित्य ने रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्रे जैसी फिल्में भी की और आदित्य चोपड़ा ने धीरे धीरे अपने पिता की कंपनी यशराज फिल्म संभालना शुरू किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए.
टुडे वी ऑल्सो विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मोहनलाल हु इज एन इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर होस्ट एंड प्लेबैक सिंगर हु हैज स्टार्ड इन मेनस्ट्रीम ब्लॉकबस्टर एंड आर्ट हाउस फिल्म्स मलयालम फिल्म्स मेनली ही हैज मेड ओवर 360 अपीयरेंसेस इन फीचर फिल्म्स एंड worked in Malayalam cinema, Tamil, Telugu, Hindi and Kannada films as well.
Pradesh Chavalyama, inikkonnum kittilla sneham polum avarada kutta vallayirikkam ee bandhangal ennokke parayunnathu achanammar jeevichirikkunnathu vare ullu adu kazhinjal ellam kazhinju.
Mohanlal is today one of the best actors in India has ever produced and he is also rated as one of the most talented actors in India.
Aur Anuja ab ghadi ki suiyan ishara kar rahi hain ki hame kehna hoga apne shrotaon ko alvida aur hum ummeed karte hain ki aapko hamara aaj ka ye karyakram zarur pasand aaya hoga. Agar aap hamare karyakram ko dobara sunna chahte hain to aap login kar sakte hain hamari website newsonair.gov.in par. To iske sath hi Anuja aur Farhat ko dijiye ijazat. Namaskar.